पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, नम्यूणनन्तजिनम् अनन्तनाणेन दीर्घसौवर्षम्, कम्मपदे सविहत्तिम् पोच्छामि जहागमं भयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाउड तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है। इनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 60 पर आ गए, 60। यहां भी हम सन्निकर्ष देख रहे हैं। ओह के बाद हम मार्गणाओं में देख रहे थे आदेश की अपेक्षा। नारकियों में हमने देखा था कि जिसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति है, उसके 16 कषाय 9 कषायों के नियम से होती है वगैरह वगैरह। नियम से विभक्ति वाला होता है कहता, वो उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, ये बात कल देखे थे हमने। अब यहाँ सभी प्रकृतियों पर घटित किया था, हम तिर्यंच की बात अभी देखेंगे। तिर्यंच गति में पढ़ते यहाँ पर देखो, तिर्यंच पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, देवगति में सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर उपरिम ग्रैवेक तक के देवों में नारकियों के समान भंग है। यानी जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है, वहाँ अन्य का उत्कृष्ट भी होता है, अनुत्कृष्ट भी होता है। वहाँ एक बात थी कि सम्यक मिथ्यात्व का जहाँ उत्कृष्ट है, वहाँ अन्य का अनुत्कृष्ट होगा, क्योंकि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट कब होता है इन जीवों में, कृतकृत्य वेद है, सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट कृतकृत्य वेद है। इसलिए यहाँ तिर्यंचनि को नहीं लिया है, योनिमति तिर्यंच को छोड़कर बाकी सब लिए, और फिर पहले नरक के समान वहां बताया। और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनियों में दूसरी पृथ्वी के समान बन गए, क्योंकि वहां कृतकृत्य वेदक नहीं उत्पन्न हो गए, ये डिफरेंस उनमें होगा। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के समान भंग है, इतनी विशेषता है। इनमें सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है। अभी अपर्याप्तकों में जो सम्यक्त्व की उत्कृष्ट होगी, तो वो तो गुणित कर्मांशित सम्यक्त्व प्राप्त करके कालांतर में इस पर्याय में उत्पन्न हुआ है मिथ्यात्व में जाकर, ऐसा जीव लेना चाहिए। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत भागहीन होती है या असंख्यात भागहीन होती है। उसकी सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट की अपेक्षा कितनी कम होती है, ऐसा देखना है। क्योंकि सम्यक में जब मिथ्यात्व में जीव जाता है, तो सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति रूप उद्वेलना या उल्टा संक्रमण चालू हो जाता है। इसलिए इसके जहां उत्कृष्ट है, वहां उसकी उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी हो सकती है। विशेष प्रकृतियों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अभी सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा बताएं, जब उसका उत्कृष्ट है तो अन्य का क्या होगा। मनुष्य अपर्याप्तकों में इसी प्रकार अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान सन्निकर्ष जानना चाहिए। विशेषार्थ, जो विशेषता सामान्य नारकियों में बतलाए है वही यहाँ तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में घटित हो जाती है। इसलिए इनमें सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। कल हमने पढ़ा था ना, देखो नारकी की बात निकालो, भूल गए ना, सब देखते हम मिथ्यात्व की क्या देखे थे हमने नारकियों में। जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहाँ 16 कषाय 6 नौ कषाय उत्कृष्ट भी हो सकती है अनुत्कृष्ट भी हो सकती है। फिर हमने देखा था कि तीन वेदों की जो है, जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है तीन वेदों का अनुत्कृष्ट है, क्योंकि सामान्य नारके में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट हो गुणित कर्मावशी क्लास समय में और तीन वेदों का उत्कृष्ट नारकी में उत्पन्न होने के पहले समय में। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के सत्व से रहित होता है कौन, जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहाँ इन दोनों की सत्ता नहीं है, क्योंकि गुणित कर्मांशिक की जो जो बातें बताई है उसमें वहाँ इन दो की सत्ता वाला नहीं हो सकता। अब 16 कषाय का जहाँ उत्कृष्ट है उसमें ऐसा ही लगाओ जैसे मिथ्यात्व में लगाया। अब सम्यक्त्व की जहाँ उत्कृष्ट है, सम्यक्त्व की उत्कृष्ट कब होती है, कृतकृत्य वेदक में, वहाँ 12 कषाय और 9 कषाय की नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि उत्कृष्ट वाला कब होता है तो कृतकृत्य वेदक, तो उसमें तो उनके बाकी का तो हीन हो ही जाता है द्रव्य। और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक्त की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणहीन होती है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब होता है, गुणित कर्मांशिक से आया है। अब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करने के पहले पहले वो औक्षमिक समय को प्राप्त किया है, उसके अंतिम समय है। और जब सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है तो मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषायों की अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि वो गुणित होने के बदले अभी यहाँ सम्यक तो प्राप्त किया है, तो इन कर्मों में भी उसके जो कुछ स्थिति कांडक वगैरह हो गए हैं जो असंख्यात भागहीन होती है। स्त्रीवेद के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, स्त्रीवेद का उत्कृष्ट कौन देखा था हमने, वो करके फिर नारकी के पहले समय में आया, उसके मिथ्यात्व 16 कषाय और 8-9 कषाय के नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि उत्कृष्ट वाला तो हम सातवें नरक में अंत में देखते हैं जो असंख्यात भागहीन होती है। इसी प्रकार नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए और पुरुष वेद का भी ऐसा ही चाहना है। उसमें क्या विशेषता है कि उसके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, क्योंकि वो देव में से आया है। हाँ, और उत्कर्षण के बिना देवों में असंख्यात गुणहानियां गल जाती है। नारकी में संक्लेश परिणाम के कारण उसका उत्कर्षण होता है और देवों में वो गल जाती है। अभी हम आते हैं यहाँ पर मनुष्यों में देखेंगे, ये हुआ था ना अपने तो विशेषार्थ देखते देखते हम वहां गए थे। हाँ, विशेषार्थ में हम तीन लाइन हमने पढ़े कि इनमें सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है, तो हमने सामान्य नारकी की बात फिर दोबारा देख ली। दूसरी पृथ्वी के समान पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी और भवनत्रिक में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें दूसरी पृथ्वी के समान भंग बन जाने से उसके समान जानने की सूचना की है। यानी अभी इसका वो कृतकृत्य वेदक नहीं है, तो सम्यक्त्व का भी उत्कृष्ट कब होगा, तो गुणित कर्मांशिक वाला है, फिर लास्ट में जाके उसने सातवें नरक में। और दूसरे नरक में कैसा लेना, गुणित कर्मांशिक वाला आया है और शुरू में उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तब उसका उत्कृष्ट होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त की मार्गणा ऐसी है जिसमें मात्र मिथ्या दृष्टि जी होते हैं, इसलिए इसमें अन्य प्ररूपणा तो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के समान बन जाने से उसके जानने की सूचना की है, किंतु इसके सिवा जो विशेषता है उसका अलग से निर्देश किया है। उन्होंने बताया था ना, बाकी उसके समान है, परंतु जहाँ सम्यक्त्व की उत्कृष्ट है वहाँ सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी हो सकती है। मनुष्य अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान भंग है, यह स्पष्ट ही है। अब मनुष्यत्रिक में सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति तीरे गया, विभक्ति वाले जीव के सेकंड लाइन उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति ती देंगे लिखना। यानी जहां मनुष्यनियों में जहां पुरुष वेद का उत्कृष्ट है वहां स्त्री वेद की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणीहीन होती है। नहीं समझे, स्त्री वेद की उत्कृष्ट कभी होती है मनुष्यनियों में, वो आया फिर नपुसक वेद का जिसमें स्त्री वेद में हो जाएगा तभी हो गई ना उसकी उत्कृष्ट, तो पहले समय में उत्कृष्ट के लिए ना। मनुष्यों में उत्कृष्ट देखना है 120 के आसपास होगा, 19-20। प्रथम समय में किस में विशेषार्थ है उसको देखना, गति में। हाँ, स्त्री वेदी जीव के पुरुष वेद का उत्कृष्ट, जीव को पुरुष वेद का उत्कृष्ट चाहिए, यानी वो स्त्री वेद के साथ जन्मना चाहिए और उसका पुरुष वेद का उत्कृष्ट है, तो ये तो पहले समय में हो सकता है उसका ना। नहीं, हमने क्या देखा था पहले, जघन्य देखा था वो, असंख्यात गुणीहीन होती है, यानी स्त्री वेद का जब उत्कृष्ट कब होता है हमने देखा था भूभूमि के मनुष्यों में। हाँ मनुष्य नहीं लेना ना भूभूमि की डायरी
124
एक मिनट भूभूमि में ही डायरेक्ट ले सकते ना उसको। मनुष्यों में भी उत्कृष्ट संचय है ये तो 123 पृष्ठ पर आएगी। देखो स्त्री वेद और नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय क्रमशः भोगभूमि और ईशान स्वर्ग में बतलाया है। वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होने पर मनुष्य के उक्त कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। वो तो स्त्री वेद के लिए तो पुरुष वेद के लिए वो देव में से लाना चाहिए उसको। एक पल्ले की आयु में उसने उत्कृष्ट किया और उसके पहले समय में मनुष्य ने रूप से जन्मा तो पहले समय में वहां पुरुष वेद का उत्कृष्ट होगा परंतु उस पोजीशन पर स्त्री वेद। यहाँ क्या कहना है जीव कौन सा है मनुष्य नहीं है यानी स्त्री वेद वाला है। स्त्री वेद का उदय से ही जन्मा है उसके पुरुष वेद का उत्कृष्ट कब है तो पुरुष वेद का उत्कृष्ट करके मनुष्य में आया है मनुष्य नहीं होकर तो जन्म के पहले समय में उसका उत्कृष्ट होगा। उस पोजीशन पर स्त्री वेद की क्या पोजीशन है उसकी तो स्त्री वेद का तो वहां उसके असंख्यात गुणहीन है। जहां उसका पुरुष वेद का उत्कृष्ट है उस समय उसका हीन है असंख्यात गुणहीन है। नहीं समझे देखो पुरुष वेद का उत्कृष्ट कब कहा है तो हमने देखा नहीं तो गुणित कर्मांशी का है फिर वो तो कालांतर से देव में उत्पन्न हुआ है पल्ले की आयु वाले देव में उसने पुरुष वेद का उत्कृष्ट कर दिया। अब वो जीव मनुष्य नहीं होकर जन्मा तो पहले समय में उसका पुरुष वेद का उत्कृष्ट है। उस पोजीशन पर उसके स्त्री वेद का कितना है तो उत्कृष्ट नहीं है तो कितना हीन है तो असंख्यात गुणहीन है। अब तीसरी लाइन अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है ना पहले समय में होगी क्योंकि वहां सम्यक दर्शन के कारण वो तो गलता जाएगा। उसके सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 6-9 कषायों की कषा करना कषायों की नियम से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति यहाँ किसको छोड़ा है सम्यक प्रकृति को छोड़ा है क्योंकि सम्यक प्रकृति तो कृतकृत्य वेदक वाले की होगी ज्यादा नौ कषायों में उसको वेद को छोड़ा। तो ये जो हमने देखा कि जहां मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है किसमें चल रही बात अनुदिश और सर्वार्थ सिद्धि तक अनुदिश अनुत्तर में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट उसके पहले समय में होगी तब सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 6-9 कषाय उत्कृष्ट भी हो सकती है अनुत्कृष्ट भी हो दोनों विकल्प वहां पर है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है या तो अनंत भागहीन होती है या असंख्यात भागहीन होती है। अब जहां मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहां सम्यक मिथ्यात्व कैसा है नियम से अनुत्कृष्ट है किसकी अपेक्षा सम्यक की अपनी अपेक्षा क्योंकि सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट कब होती है कृतकृत्य वेदक वाले की उसकी अपेक्षा यहाँ अनुत्कृष्ट कहेंगे जो असंख्यात गुणहीन होती है। तीन वेदों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात ख्या करना जो असंख्यात भागहीन होती है। इसी प्रकार सोलह कषाय छह नौ कषाय और सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी अभी इसको मुख्य रखना, जब इसका उत्कृष्ट है तो अन्य का क्या होगा, ऐसा भी कथन करेंगे। सम्यक्त्व के अभी सम्यक्त्व के बारे में जो अलग बात है वो बता रहे हैं। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के कौन सा ये अभी कृतकृत्य वेदक है, तो उसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, तो बाकी क्या बचा, तो बारह कषाय और नौ नौ कषाय। इनकी नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है। क्योंकि इनकी उत्कृष्ट कब होती है, उनके लिए जहां मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है वहां इनकी भी हो सकती है। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व सोलह कषाय और आठ नौ कषायों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है। सम्यक्त्व की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणीहीन होती है। इसी प्रकार नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष सामान्य देवों के समान है, इस प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। विशेषाय ओघ से जो सन्निकर्ष कहा है वह मनुष्यत्रिक में अविकल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें ओघ के समान जानने की सूचना की है। मात्र मनुष्य नियम में पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष में कुछ विशेषता है, इसलिए उसका अलग से निर्देश किया है। अनुदिश आदि में सब देव सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें अन्य देवों से विशेषता होने के कारण उनमें सब प्रकृतियों की मुख्यता से सन्निकर्ष का अलग से निर्देश किया है। वह सारे सम्यक दृष्टि है, अन्यत्र क्या होता है मिथ्यात्व के साथ आया है फिर सम्यक तो प्राप्त किया है, तो उसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकता है। विशेष स्पष्टीकरण स्वामित्व को देख कर लेना चाहिए, इसलिए हम बार बार छठे नंबर की पुस्तक निकालते हैं। आगे अनाहारक मार्गना तक इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषता को जानकर सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ, यानी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के साथ अन्य प्रकृतियों में उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है ये अभी यहाँ समाप्त हुआ। अब जघन्य सन्निकर्ष कहेंगे, यानी जहां मिथ्यात्व की जघन्य है वहां अन्य कर्मों में क्या पोजीशन होगी ये पूछ रहे हैं। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, ये कौन सा जीव है ये याद है? हाँ जय बेन आपको याद है, मिथ्यात्व की जघन्य में जघन्य चाहिए हमको, शपित कर्मोशिक से पहले लाना है इसको, फिर क्या करना है? देखो देखो मिथ्यात्व की जघन्य में की जघन्य चाहिए तो क्या करेंगे अभी? हाँ पहले में पहले क्षपित कर्मोशिक से आया है सम्यक तो प्राप्त करेगा, अनंत अनुबंधी की विसर्जना भी करेगा, दो बार शास्त्र सागर तक रहेगा, हाँ फिर मिथ्यात्व में आएगा। नहीं वहाँ नहीं लेना है, छूटने का नहीं लेना, दो बार छासर सागर के बाद उसने क्षपणा की है और क्षपणा का अंतिम समय लेना। नहीं समझे, मिथ्यात्व का जघन्य लेना है। हाँ पहले सम्यक तो प्राप्त करके पहली सारी कंडीशन तो पहले कर चुका है, वो दो बार चार बार रूप समाए, वो सब अनेक बार उसने सम्यक तो संयमा संयम वगैरह प्राप्त किया है और क्षपित कर्मोशी, हाँ उसने सब कर दिए, यानी उसने मिथ्यात्व को भी कम किया है ना। अभी मिथ्यात्व में वो सम्यक को प्राप्त करने के बाद, देखो इसमें बताती हूँ मैं, मिथ्यात्व का जगह नहीं लास्ट में हो। देखो क्या कहते हैं, कोई एक क्षपित कर्मांशिक जीव त्रस में आया, क्षपित कर्मांशिक जीव त्रस में आया, पेज नंबर 387। तो वहां संयम 387 पहली लाइन, क्षपित कर्मांशी जीव त्रसों में आया, त्रसों में आने ने पहले उसको एक केंद्रीय में भेजा था लंबे काल तक, वहां संयमा संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त किया, चार बार कषायों का उपशम कर फिर एक केंद्रीय में चला गया। पहले तो कर्म स्थिति प्रमाण रखा था उसको एक केंद्रीय में, वहां पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल के द्वारा उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों की निर्जरा कर, क्षपित कर्मांशिक है त्रस में आ गया है, संयमा संयम संयम बहुत बार प्राप्त किया, चार बार कषायों को उपशमाया और फिर एक इंद्रियों में चला गया, कितने काल तक, पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो उसने समय प्रबद्ध बांधे थे यहाँ से, कौन से उपशम श्रेणी आदि में, तो उसकी निर्जरा कर दी, उद्वेलना नहीं कहेंगे उसको, उसकी उसने निर्जरा कर दी। वहां के समय प्रबद्ध, देखो वहां जो समय प्रबद्ध बंधे थे, अब एक इंद्रियों में जाने के बाद क्या होता है, स्थिति कांड घात होते रहते हैं, एक इंद्रियों में नया बंध है वो तो सागर का जितना होगा और पहले बंधे हुए वो गल जाएंगे, फिर पुनः त्रसों में आकर, यानी अभी उसकी बहुत सारा हटाया ना, अब त्रसों में आकर 266 सागर काल तक सम्यक का पालन कर अनंतर दर्शन मुनि की क्षपणा करता है और फिर अंतिम स्थिति कांडक का अपनयन करने उसको गिराकर उदयावली में जो गलमान है उसका गालन कर दिया। उदयावली में निषेक बाकी है उसके, एक समय कम आवली प्रमाण निषेक है, एक 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 करके गल जाएगी, यानी समय मिथ्यात्व रूप से समय प्रकृति रूप होकर उदय में आएंगे। अब उसका एक स्थिति में दो समय काल स्थिति वाला प्रदेश सत्कर्म शेष है, एक ही निषेक बाकी है जिसका काल है दो समय, तब उसके जघन्य प्रदेश सत्कर्म है। तो मिथ्यात्व का जब जघन्य है तब अन्य की क्या पोजीशन है वो पूछते हैं। हाँ देखो अभी उत्कृष्ट नहीं होगा, हाँ उसको अजघन्य कहेंगे, जघन्य नहीं कहेंगे। देखो ओग से मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, अभी ये जीव कौन सा है वो ख्याल में आ गया अपने, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय और 3 वेद की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी क्षपणा में कहो अपने अपने काल में वो जो जघन्य होने वाली है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की तो दीर्घ उद्वेलना में लास्ट में लेना उसको। अभी जो हमने देखा दो बार 66 सागर प्राप्त किया तो मिथ्यात्व का उसने इतना घटाया, अभी उसको क्षपणा नहीं कराना, मिथ्यात्व में लाना, फिर दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना कराना, तो अंतिम निषेक है सम्यक्त्व का या सम्यक मिथ्यात्व का, तब उसकी जघन्य होगी। परंतु जब मिथ्यात्व की जघन्य है तो उनकी क्या पोजीशन है, उनकी अजघन्य है। लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। इनको अलग निकालने का कारण क्या है? उसका जो प्रमाण है ना, हीनता का प्रमाण अलग अलग है। यानी जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है वहाँ बाकी सभी का अजगण्य ही है। अब वो अजगण्य कितना है? तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय और 3 वेद के बारे में असंख्यात गुणा अधिक है, क्योंकि उनके अपना जब जघन्य होता है उससे ये असंख्यात गुणा है। और लोभ संज्वलन 6 नौकषायों की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात्वे भाग अधिक होती। किससे असंख्यात्व भाग अधिक है? उनके अपने जघन्य से असंख्यात्व भाग अधिक है। तो लोभ का जघन्य कहाँ होता है? अधप्रवर्तन के अंतिम समय। शंका। सम्यक्त गुण के साथ जो पंचेंद्रियों में 2-66 सागर काल तक परिभ्रमण करता है, उसके संचित हुए 1.5 गुणहानि प्रमाण पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध अपने अपने जघन्य द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात गुणे होते हैं, असंख्यात वे भाग अधिक नहीं। क्योंकि एकेंद्रिय जीव के उत्कृष्ट योग से भी पंचेंद्रिय जीव का जघन्य योग असंख्यात गुणा पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ऊपर जो उन्होंने बताया था ना कि जब मिथ्यात्व की जघन्य कर देते हैं तो उसमें असंख्यात भाग ही अधिक है, ऐसा कहा? किसके लिए? लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों के बारे में। तो वहां कहता वो तो और ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एकेंद्रिय में से जब पंचेंद्रिय में आया है तो वहां का समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुणा होना चाहिए, क्योंकि योग जो है एकेंद्रियों के योग से पंचेंद्रियों का योग असंख्यात गुणा है। समाधान। यहाँ उक्त शंका का समाधान करते हैं। 2-66 सागर काल के भीतर लोभ संज्वलन का निरंतर बंध करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्य से वह विशेष अधिक ही होता है, अपने यानी लोभ के। क्योंकि अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त होने वाले द्रव्य से भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य असंख्यात वे भाग अधिक होता है। क्या कहते हैं? अब ये जो ये कौन सा काल है? अल्पतर है। जब तक समय दृष्टि है तो अल्पतर बंद होता है, जो है उससे कम होता है, जो ऑलरेडी है उससे कम होता चला जाता है, उसको अल्पतर कहेंगे। और मिथ्यात्व अवस्था में भुजगार होता है, जो है उससे ज्यादा होता है। यानी यहाँ जितना क्षय को प्राप्त हुआ है उसका असंख्यात्व भाग ही अधिक भुजगार में होता है। फिर शंका। किन्हीं जीवों के अपने जघन्य द्रव्य से संख्यात्व भाग अधिक, संख्यात गुणा अधिक या असंख्यात गुणा अधिक क्यों नहीं होता? यानी उसमें वो असंख्यात भाग ही अधिक क्यों कहा? अन्य कोई प्रोपोर्शन क्यों नहीं होता है? नहीं, क्योंकि असंख्यात भाग अधिक ही होता है, क्योंकि उत्कृष्ट योग के साथ 2-66 सागर काल तक परिभ्रमण करने वाले समय दृष्टि जीव के भी अल्पतर काल से भुजगार काल नियम से अधिक ही उपलब्ध होता है। या इसका अल्पतर लेना, प्रदेश विभक्ति का अल्पतर, ये कहना चाहते हैं। यदि उत्कृष्ट योग भी लेंगे हम, इन भुजगार काल भी लिया, मेरे ख्याल से यहाँ तो प्रकृति की बात करनी है। इन्हें समय दृष्टि रहते हुए स्थिति तो कम बनेगी, मगर प्रदेश है वो योग के अनुसार बनेगी। यानी प्रदेशों में अल्पतर नहीं, क्योंकि ये जो अल्पतर भुजाकार इसमें भी आएगी बात, आगे आने ही वाली है ना। प्रदेशों के बारे में अल्पतर और भुजाकार होना चाहिए। हमने पहले तो स्थिति की अपेक्षा अल्पतर देखा था। हाँ, तो इस यह किस प्रमाण से उपलब्ध होता है? तो उच्चारणाचार्य के नियम से असंख्यात भाग अधिक है, इस विचार से उपलब्ध होता है। यानी वो अल्पतर काल ज्यादा होता है, ये लेना। अल्पतर काल देखो, अल्पतर काल यानी जिस काल में कम बनता है, प्रदेश की बात है, यहाँ स्थिति की बात नहीं। स्थिति तो कम ही बन देगी, परंतु उसमें नंबर ऑफ परमाणु जो है वो योग से बन देगी, तो सम्य दृष्टि होगा, इसलिए अल्प योग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी योगों का परिवर्तन होता है, तो वहां कहते हैं अल्पतर काल यानी लगातार अल्प अल्प समय प्रबद्ध का काल, और भुजगार यानी अधिक 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 का काल, वो ज्यादा होता है। यानी काल ही थोड़ा ज्यादा है, इस वचन से उपलब्ध होता है। शंका, कर्म प्रदेशों का भुजगार और अल्पतर पद किस निमित्त से होता है? क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमंडल स्वभावतः बढ़ता और घटता है, उसी प्रकार यहाँ पर कर्म प्रदेशों का भुजगार और अल्पतर पद स्वभाव से होता है। और वो भी बंधन बंध की अपेक्षा नहीं लेना, उसमें फिर प्रदेश विभक्ति यानी सत्ता में स्थित प्रदेश भी कम ज्यादा होते रहते हैं, स्वभाव से कम होते, कभी ज्यादा होते, कभी कम होते। अब फिर शंका, यदि अल्पतर काल के भीतर नष्ट होने वाले द्रव्य से भुजगार काल के भीतर संचित होने वाला द्रव्य विशेष अधिक ही होता है, तो क्षपित कर्मांशिक के द्रव्य से गुणित कर्मांशिक जीव का द्रव्य भी विशेष अधिक होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वेदना और चूर्णी सूत्र के साथ विरोध आता है। यानी वो विशेष अधिक नहीं, वो तो हमने कितने गुना होता है ऐसे देखे, क्षपित कर्मांशिक की अपेक्षा गुणित कर्मांशिक, हमने पांच वृद्धियों द्वारा वो वृद्धि वगैरह देखी थी बहुत जगह। तो ये कहते यहाँ तो विशेष अधिक होना चाहिए, अगर आपका ये सही है तो विशेष अधिक होना चाहिए। समाधान, विशेष अधिक यह सत्य है तो भी वेदना और चूर्णी सूत्र के चूर्ण सूत्र हुआ चूर्णी सूत्र करना वेदना और चूर्णी सूत्र के साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि स्ववचन विरोध को छोड़कर दूसरे ग्रंथ में प्रतिपादित अर्थ के साथ आने वाले विरोध को नहीं स्वीकार किया गया है। दो अलग अलग ग्रंथों में विरोध हो तो बात अलग है, ये स्ववचन को ही विरोध है तो उसको विरोध नहीं कहेंगे। वेदना और चूर्णी सूत्रों का उपदेश है कि अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त होने वाले द्रव्य से गुणित कर्मांशिक के विषय रूप भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य कहीं पर असंख्यात भाग अधिक है, कहीं पर संख्यात भाग अधिक है, कहीं पर संख्यात गुणा अधिक है, और कहीं पर असंख्यात गुणा अधिक है, इसलिए वहां गुणित कर्मांशिक का काल कर्मस्थिति प्रमाण है, परंतु क्षपित कर्मांशिक के भुजगार काल के भीतर संचित हुए द्रव्य से अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त होने वाला द्रव्य कहीं पर असंख्यात विभाग है, कहीं पर संख्यात विभाग है, कहीं पर संख्यात गुणा अधिक है, और कहीं पर असंख्यात गुणा अधिक है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो क्षपित कर्मांशिक का काल कर्मस्थिति प्रमाण कहा है उससे जाना जाता, परंतु उच्चारणा के अनुसार गुणित कर्मांशिक संबंधी अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त हुए द्रव्य से गुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है। यानी ये दो ही विरोध कैसा नहीं है ये बात बताना चाहते हैं। एक बार बता चूर्णी सूत्र के अनुसार तो उसमें कहीं पर संख्यात्वा भाग अधिक है, असंख्यात्वा भाग अधिक है या संख्यात गुणा अधिक है और असंख्यात गुणा भी अधिक है, ये चारों ही बातें बताए। परंतु उच्चारणाचार्य के अनुसार गुणित कर्मांशिक संबंधी अल्पतर काल के भीतर जो क्षय को प्राप्त हुआ है उससे भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है। फिर उसके लिए प्रमाण पूछते हैं, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो लोभ संज्वलन के जघन्य द्रव्य से, ये जो हमने पहले अभी पढ़ा था, लोभ संज्वलन का जघन्य कब है? अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, 266 सागर काल के भीतर पंचेंद्रिय जीव के योग द्वारा संचित हुआ भी लोभ संज्वलन का द्रव्य विशेष अधिक ही है। यानी ज्यादा अधिक नहीं है ये कहना चाहते, विशेष अधिक ही है। असंख्यात गुणा या संख्यात गुणा अधिक नहीं है, असंख्यात व भाग ही अधिक है। ये हम पहले पढ़ चुके थे और उसी के ऊपर इतनी सारी बहस हो गई। अब कहते यदि ऐसा है तो उच्चारणा में गुणित कर्मांशिक का काल कर्मस्थिति प्रमाण किस लिए कहा है? उसका समाधान, भुजगार काल के भीतर अपना असंख्यात व भाग अधिक द्रव्य का संग्रह करने के लिए कहा है। यानी वो कितना अधिक है, जघन्य से अजघन्य कितना अधिक है, उसके बारे में ये सारे चर्चा समाधान चला। भुजगार काल कर्म स्थिति प्रमाण, ये भुजगार काल ये अभी आएगी बात, अभी अपनी हुई नहीं ना, आगे चल के आएगी। प्रदेश विभक्ति में भुजगार अल्पतर इसका अपनी चर्चा नहीं हुई, हमने तो स्थिति विभक्ति में वगैरह देखी थी। यानी लगातार हम स्थिति कितनी बंदी है या कितनी कम है या सप्ताह में पड़ी हुई कब कम होती है उसकी बात हमने देखी, यहाँ प्रदेशों की बात बता रहे। तो वो विषय तो आएगा आगे चलकर, भुजगार अल्पतर वगैरह। हाँ, भुजगार काल यानी वो तो यहाँ लिखा ना, भुजगार काल में ज्यादा समय रखेंगे तो उसका संचय ज्यादा होगा। हाँ, चूर्णी सूत्र में, हाँ, मत अलग होने पर भी विरोध क्यों नहीं है वो बात यहाँ बताना चाहते हैं। एक ने तो चारों प्रकार से ज्यादा है ऐसा स्वीकार किया, भुजगार और अल्पतर काल के भीतर की उनकी चर्चा चल रही है। भुजगार कब होगा? जब योग ज्यादा रहेगा तब। अल्पतर कब होगा? जो योगहीन होगा तब। अब हमने क्या देखा था, जब मिथ्यात्व की जघन्य है तब अन्य कर्मों की क्या है तो अजगन्य है। उसमें दो ग्रुप किए थे, एक के लिए तो कहा था असंख्यात गुणाहीन है और दूसरे ग्रुप के लिए कहा था असंख्यात व भागहीन है। देखो 62 पृष्ठ पर जहां शुरू हुआ है अपना जघन्य का प्रकरण, 99 नंबर का पॉइंट जहां लिखा है उस पैराग्राफ में देखो, मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिला ना, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय और 3 वेद की नियम से अजघन्य है। कितनी? वो असंख्यात गुणी अधिक है, अजघन्य इसलिए भी यहाँ अधिक कहना। जब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में कहते थे तो हीन कहते थे, यहाँ अजघन्य है ना, तो उनके अपने जघन्य से कितना ज्यादा है, असंख्यात गुणा ज्यादा है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? लोभ संज्वलन और क्षणोपशाय, उसकी भी अजगण्य है, वो कितनी ज्यादा है, असंख्यात्व भाग ज्यादा है। ये ख्याल में है? यानी जहां मिथ्यात्व की जगण्य है सभी की अजगण्य ही है, उसमें दो ग्रुप किए, कोई असंख्यात गुणा अधिक है और कोई असंख्यातवा भाग अधिक है। असंख्यातवा भाग अधिक में लोभ संजोलन को लिया और छह नौ कषायों को लिया, और वहाँ सम्यक तो सम्यक नित्यात्व ग्यारह कषाय को लिया वहाँ पर और वेदों को लिया। अब हम यहाँ 100 नंबर पर आते हैं, पेज नहीं पैराग्राफ, पेज नंबर है 64 लास्ट लाइन। सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, अब सोचना है सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य कब है। तो हमने देखा था स्वपित कर्मावशिक है, शास्त्र सागर काल तक सम्यक दृष्टि रहा, मिथ्यात्व में गया है, दीर्घ उद्वेलना के द्वारा उद्वेलना की, उसका अंतिम समय लेना है। उस पॉइंट पर मिथ्या दृष्टि है ना, ये तो उसके मिथ्यात्व की जघन्य रहेगी क्या नहीं रहेगी, अजघन्य रहेगी। तो उस जीव के मिथ्यात्व और उसके सम्यक्त्व की क्या पोजीशन होगी। हाँ जय बे, जहां सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है उस पोजीशन पर सम्यक प्रकृति की क्या होगी, जघन्य होगी क्या अजघन्य होगी। हाँ अजघन्य होगी। आप क्या कहते हैं, उसकी उद्वेलना पहले पूरी होगी, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पहले पूर्ण होती है तो वहां उसकी सत्ता ही नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व ही है उसका लास्ट पॉइंट है ना अंतिम, तो मिथ्यात्व कैसा होगा, अजघन्य होगा नियम से। तो उस जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 15 कषाय, 3 वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, यानी उनके अपने अपने जघन्य से असंख्यात गुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन और छह नौ कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है, जैसे वहां पर लिया था ऐसे यहाँ पर लिया कितनी अधिक है। तथा वह सम्यक्त्व का नियम से अविभक्ति वाला होता है, लिखा है ना, अब ये ख्याल में है ना। अब सम्यक्त्व की जघन्य करेंगे। हाँ अब सम्यक्त्व की जघन्य वाले के क्या होगा, तो सम्यक्त्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व 15 कषाय और 3 वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि जिस पोजीशन पर सम्यक्त्व की जो अंतिम उद्वेलना का अंतिम समय है उसके एक निषेक बाकी है वहां पर, और उस पोजीशन पर सम्यक मिथ्यात्व का भी उद्वेलना होने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग बाकी है, यानी उसके असंख्यात गुणा वहां निषेक भी पड़े हैं। प्रदेश हम यहाँ निषेकों को नहीं लेना है, यहाँ प्रदेशों को ही लेना है, सोचने के लिए हम देख सकते हैं। तो बाकी सारे अपने अपने जघन्य से असंख्यात गुणा अधिक है, और लोभ संज्वलन और छह नौ कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। देखो क्यों ये असंख्यात वे भाग, क्योंकि इसका जघन्य किस पोजीशन पर है, अधप्रवृत्तिकरण के अंतिम समय में, वहां भी उसकी सत्ता बहुत सारी पड़ी है, और ये सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य जब है उसका एक निषेक बाकी है, उसके कंपैरिजन में उसका अजघन्य असंख्यात गुणा कहेंगे। और वो लोभ संज्वलन का जो जघन्य है अधप्रवृत्त अंतर समय में, उस अपेक्षा यहाँ का जो लोभ संज्वलन है वो असंख्यात भाग ही अधिक होगा, इतनी बात है। कंपल्शन अपने अपने जघन्य के साथ कंपैरिजन जो करनी है ना, फिर से दोबारा देखो, जहाँ सम्यक्त्व का जघन्य है कब है, वो सारे क्षपित कर्मौशिक दो छात्र सागर सम्यक दृष्टि रहा पल्ले का असंख्या का दीर्घ उद्वेलना में उद्वेलना की, उस पोजीशन में अन्य कर्मों की स्थिति क्या है, तो अजघन्य है। तो सम्यक मिथ्यात्व में अभी कितने पड़े हैं, तो पल्ले का असंख्या का भाग पड़ा है जब उद्वेलना होने के लिए, तो उसका भी अजघन्य है, तो वो उसके अपने अजघन्य से कितना गुना है, असंख्यात गुना है। अभी हम लोभ की डायरेक्ट बात करते हैं, इस पोजीशन में लोभ की क्या अवस्था है, अजघन्य है, तो वो कितना है, उसका जघन्य कहाँ पर है, अदब प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में वहां जितने लोग के प्रदेश सत्कर्म बाकी है उसकी अपेक्षा यहाँ का प्रदेश सत्कर्म असंख्यात भाग ही अधिक है। अब मिथ्यात्व का जगन्य कब, वो जो क्षपणा करने वाला का अंतिम समय है उसका एक निषेक है वहां पर, और यहाँ पर उसके तो बहुत सारा अंदर सत्ता पड़ी है क्योंकि मिथ्या दृष्टि उद्वेलना चल रही है। वो सत्ता है, उसने तो 70 कोड़ा कोड़ी की भी बंद करता है या अन्य भी जो कुछ है। उद्वेलना के कारण इसका जघन्य हुआ है, परंतु मिथ्यात्व का अजघन्य है, वो अपने जघन्य से कितना है तो असंख्यात गुणा है। केवल लोभ संज्वलन और 6-9 कषायों में ही ये असंख्यातवा भाग अधिक कितना लगा है, अजघन्य है। इनकी कंपैरिजन अपने अपने जघन्य से हो रही है, सम्यक्त्व के जघन्य से नहीं हो रही है। वो उसका समकाल बता रहे, जिस काल में सम्यक्त्व का जघन्य है उस काल में अन्य कर्मों की क्या पोजीशन है ये बता रहे हैं। कारण पहले कहे आए हैं इसलिए यहां उसका कथन नहीं करते। अब ये तो हो गया ना, सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति, सॉरी मिथ्यात्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति, इनकी जहां जहां जघन्य उसके साथ अन्य कर्मों की पोजीशन बता दी। अब अनंतानुबंधी क्रोध की जघन्य, ये कब होती है? विषय योजना में भी होती है, परंतु हमने देखा ना एक बार शुरू में सम्यक तो प्राप्त किया था, हाँ क्षपित कर्मोशिक आया है, सम्यक तो प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गया, सम्यक तो प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विषय योजना की, फिर मिथ्यात्व में गया, अंतर्मूर्त में फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त किया, फिर 2-6 सागर काल तक समय दृष्टि रहा, फिर अंत में जाके विसंयोजना की, तब उसकी अनंतानुबंधी का जघन्य है। अब उसमें भी उन्होंने क्रोध मान माया लोक का अलग अलग लिया, तो जहां क्रोध का जघन्य है वहां प्रदेशी भक्ति वाले जीव के मान माया और लोभ की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, यानी दोनों ही हो सकते कहते हैं। यदि अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है वह दो स्थान पतित होती है, या तो अनंत में भाग अधिक या असंख्यात में भाग अधिक होती है। विसर्जना तो सबकी हो रही है, चारों का साथ में होता है, परंतु उसमें प्रदेशों में अलग अलग लिया है, संक्रमण भी होता रहता है ना उसमें चारों में आपस में। जब हमने अनुभाग विभक्ति देखी थी उसमें भी हमने देखा था एक दूसरे में वो संक्रमित होते हैं, तो जहां इनका उत्कृष्ट है वहां दूसरे का उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, सॉरी जघन्य की बात चल रही, जघन्य भी हो सकता है, जघन्य भी हो सकता है, और वो कितना अनंत वा भाग अधिक या असंख्यात वा भाग अधिक कितना ही लेना अजघन्य में। मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय और 3 वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। लोभ संज्वलन और 6-9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति है जो असंख्यात में भाग अधिक होती है। इसी प्रकार मान माया और लोभ के मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसमें भी जानना जब उसका जघन्य तो दूसरे का जघन्य होगा भी या अजघन्य होगा, यानी अनंतानुबंधी के 4 में ही आपस में ये बात लगेगी। लोभ संज्वलन और 6-9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात में भाग अधिक, ये तो पढ़ा मैंने। अब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 7 कषायों की, 7 कषाय लिए हो, 9 कषाय नहीं, कौन से अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और जो आठ लेते उनमें से सात तो अन्य सात जो कषाय है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उनके नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति या अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है। यदि अजघन्य होती है वह दो स्थान पतित होती है या तो अनंत में भाग अधिक होती है या असंख्यात में भाग अधिक होती है। तीन संज्वलन और तीन वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। अप्रत्याख्यानावरण की जघन्य कब होगी? क्षपणा में, उस समय बाकी जो है उनकी अजघन्य पाई जाएगी। लोक संज्वलन और छह नौकशायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात में भाग अधिक होती है। नहीं 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 बढ़ने की बात नहीं, यहाँ कम होगा, कम उनकी जो उनका जघन्य कब होगा या अभी उत्कृष्ट की बात मत सोचना। देखो हाँ हाँ, फिर भी अभी अभी इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर कितना है उसका असंख्यात गुणा ज्यादा है। बाद में स्थिति कांडक वगैरह उसमें भी होगे ना, गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है, यानी उनका कितना ही माल चला जाएगा बाय द टाइम उसकी जो क्षपणा का समय आएगा। क्रोध वगैरह का जघन्य कहाँ लिया अपना अपना उनका? क्रोध का जघन्य कब लिया था? संज्वलन क्रोध का हाँ, लास्ट वाला जो उच्चिष्ठावली की भी बात, उच्चिष्ठावली के बाद भी उसका जो नवक समय प्रबद्ध जो है वो संक्रमित होगा उसकी बात है। देखो क्षपित कर्मांशिक वाला है, जब क्रोध का उदय है तब उसने अंतिम समय में क्रोध को बांधा है। कैसे बांधा है? जघन्य योग के साथ बांधा है। अंतिम समय ना उसका क्रोध वेदक का अंतिम समय है, उसके बाद उसकी उच्चिष्ठावली बाकी है। और जो अंतिम समय में बंधा है उसकी बंधावली समाप्त होती तब तक उच्चिष्ठावली निकल जाएगी। अब क्या बचेगा? अंत में कुछ समयों में बंधे हुए समय प्रबद्ध रहेंगे, वो भी एक 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 चला जाएगा। तो अंतिम समय में बंधे हुए की अंतिम फाली बाकी रहेगी तब उसका जघन्य होगा। उस जघन्य की अपेक्षा अब का जो है वो कितना है? अपने जघन्य के साथ कंपेयर करना, तो वहां तो उसका अपने समय प्रबद्ध का भी एक फाली उसमें से रह गई है। एक ही समय प्रबद्ध की फाली रहेगी वहां पर, और यहाँ पर तो उसके कितने अभी स्थिति कांडक वगैरह बाकी है। तो ये यहाँ पर कितना ज्यादा है? असंख्यात गुणा ज्यादा है। ख्याल में है नहीं बात? यानी इसका जघन्य होना अभी बाकी है तो उसमें स्थिति कांडक हो गया, ये बात बाकी बातें हो जाएगी। लोभ संज्वलन और छह नौकशायन की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात में भाग अधिक होती है, क्योंकि इनका जो जघन्य है वो बहुत ज्यादा है, बाकी का जघन्य है वो तो बिल्कुल अल्प है। हाँ, तो उसके साथ असंख्यात गुणा होता है, और लोग के जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे तो असंख्यात का भाग अधिक होता है। हाँ, उसका जघन्य ही बड़ा है। वह शेष प्रकृतियों का नियम से, किस जीव की बात चल रही है? अप्रत्याख्यान आवरण की बात चले। शेष प्रकृतियों का नियम से अविभक्ति वाला होता है। अब ये शेष प्रकृतियां कौन कौन सी है? अनंत अनुबंधी, दर्शन मुनि की तीनों। क्यों ऐसा कहा? ये ऐसा क्यों कहा? क्या कहा? ये देखो, हाँ क्षपणा कर रहा है, तो क्षपणा कौन कर सकता है? जो क्षायिक समय दृष्टि वही करेगा। ये क्षपणा कब होती है? आठ कषायों की नवे गुण स्थान में। शुरू में आठ कषायों की क्षपणा होती, बाद में आगे आगे की बातें। अभी हमने अन्य कर्मों को नहीं ले रहे, पहले नाम कर्म की भी जाएगी, जो कुछ है नाम कर्म की 13 चली जाएगी और 3 दर्शनावरण की जाएगी 16, फिर इसका 8 का क्षय हो जाएगा। क्रम से जाती है ना वे नवे गुण स्थान में, वो 16 का पहले क्षय होगा, फिर ये 8 कषाय चली जाएगी और फिर वेद चले जाएंगे, 6 कषाय चले जाएंगे, इस तरह से एक 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 करके चला जाएगा। तो जब इसकी जगन्य है तो मिथ्या तो नहीं है, समय मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी भी नहीं है उसकी सत्ता। वह शेष प्रकृतियों का नियम से अविभक्ति वाला होता है। इसी प्रकार 7 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कहा कि जहां क्रोध है वहां अन्य नहीं है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 8 कषाय एक साथ नष्ट हो जाते हैं। वहां विभक्ति में जगन्य किसी का अजगन्य है, उसकी तो वेरिएशन हो सकती है, परंतु जहां एक नहीं हो दूसरी की सत्ता ऐसा नहीं बन सकता, सबकी सत्ता एक साथ नष्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होते हैं ना, संक्रमित होते हैं, संक्रमण के द्वारा ही नाश होता है। परमाणु तो परमाणु रूप से वहीं पर है, वो अप्रत्याख्यानावरण रूप से थे, वो संज्वलन रूप से सभी टर्न हो जाते हैं और फिर उसका उदय चालू रहता है। क्रोध संज्वलन की जगन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के देखो, इसीलिए वो तो लोभ संज्वलन को भी जगन्य कब कहा? अधप्रोग क्यों? बाद में ये सारा माल उसमें आने वाला है ना, 8 कषायों का भी। क्रोध संज्वलन की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के ये संज्वलन लिया भी, पहले अप्रत्याख्यान लिया था, मान संज्वलन और माया संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। क्योंकि देखो, जब क्रोध की जघन्य का नंबर आया है, अंतिम समय में जघन्य योग से बंधा हुआ का एक फल ही रह गया, उस समय उसका पहले वाला क्रोध का सारा टर्न होकर माया रूप हो गया है, तो माया का अजगन्य है ना उस पोजिशन का, कितना ज्यादा है? असंख्यात गुना ज्यादा है। क्रोध के साथ असंख्यात गुना नहीं लगाना है, माया के अपने जगन्य के साथ असंख्यात गुना लगाना है। लोभ संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियों का नियम से अविभक्ति वाला होता है, यानी उसके भी वो 8 कषाय भी नहीं है, अनंतानुबंधी भी नहीं है और दर्शन मोनी भी नहीं है। इतना ही क्या? ना उसके 6 कषाय है, 6 कषाय और ना ही वेद है। सबकी क्षपणा हो गई ना उस समय। यानी जब क्रोध की जघन्य का नंबर आया है, तो मात्र संज्वलन ही 4 बाकी है। जहाँ क्रोध का जघन्य है उसका अंतिम समय, सब कुछ निकल गए, वेद गए हैं, 6 कषाय गए हैं, 4 संज्वलन है, उसमें भी क्रोध का अंतिम समय है, इसके आगे 3 रहेंगे। जब मान का जघन्य होगा तो अन्य 2 ही रहेंगे वहां पर, जब लोभ का जघन्य होगा तो अन्य कितने रहेंगे? हाँ, अरे सब कुछ रहेंगे। मैंने पूछा जब लोभ का जगह नहीं होगा तो बाकी कौन रहेगा, अपने कोई नहीं रहेगा। नहीं वो तो अधिक प्रवृत्त कर्म के अंतिम समय है, तो वहाँ तो सब कुछ है। हाँ सात्विक अनुष्ठान के अंत में अभी तो श्रेणी चढ़ा नहीं हूँ। हाँ उसमें तो साइक समय दृष्टि ले गया हूँ। हाँ हाँ मुझे ऐसा लगा कि इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा। जब माया का जगन है तो वहाँ लोभ है, परंतु जहाँ लोभ का जगन है अभी नीचे आना अधप्रवृत्त कर्म के अंतिम समय में, वहाँ बाकी सब है वहाँ पर। हाँ है वहाँ पर, देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे हम। देखो मान संज्वलन की पांचवी लाइन में, मान संज्वलन की जगन्य प्रदेश भक्ति वाले जीव के माया संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेश भक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। ये तो ख्याल में आते हैं ना, रीजनिंग उसका हमें ख्याल आना चाहिए, क्योंकि अभी सारा ही मान क्रोध मान वगैरह नोकश है, सारा द्रव्य अभी माया रूप हो गया है, वो उसके अपने जगन्य से असंख्यात गुणा है। उसका जगन्य कब होगा माया का, माया के उदय के अंतिम समय में बंधे हुए का जगन्य योग से उसका अपना एक फाली बाकी रहेगी तब, बाकी उसका जो माया का है वो लोभ रूप हो जाएगा बाय दैट टाइम। देखो मान की जगन्य प्रदेशी भक्ति वाले जीव के माया संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेशी भक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेशी भक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। अब माया की सात बतक, माया संज्वलन की जगन्य विभक्ति प्रदेश विभक्ति वाले जीव के लोभ संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है कितनी कही अभी यहाँ पर। अब तक हम उसको असंख्यात व भाग ही अधिक कहते थे, अब तक सर्वत्र हमने लोभ संज्वलन को असंख्यात व भाग अधिक ही कहा था, अब क्या कह रहे हैं असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि अभी ये लास्ट पॉइंट है। पहले में पहले क्या हुआ था, नौ कषाय का माल क्रोध में आया था, फिर सारे वेदों का वगैरह, फिर क्रोध का मान में, मान का माया में, अब ये पूरा का पूरा मोहनी का द्रव्य एकमात्र लोभ में आ गया है। तो वो अपने जगन्य से यहाँ असंख्यात गुणा है। अब तक सर्वत्र उसको हमने असंख्यात और भाग अधिक कहा था, ख्याल में आई बात। हाँ वह शेष प्रकृतियों का अविभक्ति वाला होता है, यानी जहां माया का जगन्य है वहां मोहनी में से एकमात्र लोभ बाकी है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है। अब लोभ संज्वलन की जगन्य प्रदेश विभक्ति वो कुछ दसवें में नहीं घटित करना है। हाँ उस जीव के 11 कषाय और 3 वेदों की नियम से अजगन्य प्रदेश भक्ति होती है। 11 कषाय में किसको छोड़ा, लोभ को ही स्वयं को छोड़ा ना। हाँ बाकी अनंत अनुबंधी के तो वो क्षय करके आया है जो असंख्यात गुणी अधिक है। 6-9 कषाय के नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है, इसको भी असंख्यात व भाग अधिक ही बताया। अब आगे स्त्री वेद की जगन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 3 संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। देखो स्त्री वेद की जगन्य कब होगी, इसी प्रकार ने नपुंसक वेद के समान कहा उन्होंने। देखो पढ़ते हैं, नपुंसक वेद का जगन्य किसके होता है, जो क्षपित कर्मांशिक जीव अभवियों के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म के साथ त्रस में आया, इन्हें एक इंद्रियों में जघन्य कर दिया उसने और त्रस में आ गया। सम्यक तो संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त किया, चार बार कषायों को उपशमा कर दो छासर सागर तक सम्यक को पालन कर उसके बाद क्या हुआ, मिथ्यात्व में गया और नपुसक के वेद के उदय सहित मनुष्य में जन्मा और संयम धारण कर अंत में नपुसक वेद की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। हाँ, अब यहाँ स्त्री वेद में घटित कर, यहाँ तो इतना ही लिखा है, दो छासर सागर काल तक सम्यक को पाल कर क्षय करने के लिए उद्यत हुआ। फिर दोबारा वो नपुसक वेद, क्योंकि छासर दो छासर सागर काल तक यदि वो सम्यक दृष्टि रहा है और क्षपणा में उद्यत होता है तो पुरुष वेद का उदय वाला होगा, इसलिए उसको फिर मिथ्यात्व में ले गए हैं और मनुष्य में जन्मा है वो नपुसक वेद या स्त्री वेद जिसकी बात कर रहे हैं उसके साथ उसको जन्म लेना है और फिर वो क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है, नपुसक वेद की क्षपणा के लिए। अब यहाँ पढ़ रहे थे हम 66 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, स्त्री वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के तीन संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन और छह नौकशायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। इसी प्रकार नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, दोनों में केवल अपना अपना नाम लिखना, अपने अपने वेद सहित वो उदय में उस उदय से ही जन्मा है और अपने अपनी क्षपणा चालू की। पुरुष वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले, हाँ जघन्य में लास्ट में लिया था ना, उस उदय सहित चढ़ने वाले के, ये पेज नंबर मैंने अभी जो पढ़ा 388 था और उसमें उन्होंने रेफरेंस 267 टू 68 का दिया है। मैंने ओघ में जिसको पूछा था वही तो बाद में घटित होगा ना। हाँ देखो, नपुसक वेद का जघन्य सत्कर्म कितने होता है, तो अभी हमने जो पढ़ा था पुरुष वेद का जघन्य पेज 291, कहाँ गया पुरुष वेद का, अभी पुरुष वेद का पढ़ना बाकी है ना। हाँ पुरुष वेद का, एक मिनट में पढ़ के बताती हूँ आपको। हमने जो इतने सारे पुरुष वेद पर कितने दिन देखा था ना, अंतिम समय में जो जघन्य योग से बंधा है उसका अंतिम समय लेना, नवक समय प्रबंधक की अंतिम पाली। स्थिति कांडक के बाद में जो लिखा है ना, देखो यानी पुरुष वेद का जघन्य किसका है, जघन्य परिणाम योग स्थान से उसने क्षपक जीव ने पुरुष वेद के अंतिम समय में जो कर्म बंधा है वो क्या होता है, एक बंधावली निकल जाएगी, एक आवली काल में उसका एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, जब अंतिम फाली रहेगी तब उसका जघन्य होगा। पूर्व में बंधे हुए के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है पुरुष वेद में, ये उसका जघन्य है। अब जिसके पुरुष वेद की जघन्य है उसको हम पढ़ रहे थे सातवीं पुस्तक में, उसके तीन संज्वलनों की, यानी जिस समय वो पुरुषवेद की अभी जघन्य है उसका अंतिम समय है, वहां पर अभी उसकी सत्ता में क्या है, चार संज्वलन ही है, यानी अन्य क्या है, एक तो वो स्वयं पुरुषवेद और चार संज्वलन, उसमें से तीन संज्वलनों की नियम से अजगण्य प्रदेशी भक्ति होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि अभी ये जो है यहाँ पर जो पुरुषवेद के अलावा जो चार संज्वलन है, लोभ की बात तो अलग लेनी है क्योंकि लोभ का जगन्य अलग पोजिशन, अपगत वेदिका सत्ता वाला अंतिम समय, यहाँ पुरुष वेद की बात नहीं चल रही है, पुरुष वेदी जीव की बात नहीं चल रही, जगन्य भी जो है वो किसके होते हैं, पुरुष वेद से ही चढ़ा है, परंतु जब उसका जगन्य होता है उस समय वो अपगत वेदी हो गया है, पुरुष वेद के रहते हुए उसका जगन्य नहीं है, ख्याल में आई नहीं है बस, तो उस समय तीन संज्वलनों की नियम से अजगण्य होती है जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि वो जो तीन संज्वलन में जितना प्रदेश बाकी है उसके वहां स्थिति कांडक वगैरह सब हो गए और उसके अपना अपना अंतिम समय में उसका जगन्य होगा, उस कंपैरिजन में उनका असंख्यात गुणा है इस पोजीशन पर, और लोभ संज्वलन की नियम से अजगण्य है जो असंख्यात विभाग अधिक होती है, अब यहाँ नौ कषाय है कि नहीं है, हाँ नहीं है, उसकी सब सपना हो चुकी है, अब हास्य की जगन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, जब हास्य की जगन्य है, हास्य के साथ छह नौ कषाय एक साथ जाएंगे, तो उस समय जीव के तीन संज्वलन संजब हुआ संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अजगण्य प्रदेश विभक्ति होती है, पुरुष वेद को भी लिया है ना, क्योंकि अभी तो पुरुष वेद का नया समय प्रबद्ध भी बन रहा है, यहाँ पर उसका अंतिम समय है ना हास्य का, इसके बाद नवक समय प्रबद्ध और फिर पहले वाला भी जितनी सत्ता पड़ी थी वो सब है वहां पर, तो पुरुष वेद की अजगण्य होती है वो कितनी है, तो असंख्यात गुणी अधिक होती है, लोभ संज्वलन की नियम से अजगण्य होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है, और अन्य जो पांच नौ कषाय है, छह नौ कषाय एक साथ जाते हैं, वो नियम से जगन्य प्रदेश विभक्ति होती है या अजगन्य प्रदेश विभक्ति, नहीं छह नौ कषाय अकेले जाते हैं, छह नौ कषाय का संक्रमण होता है उस समय, वो पुरुष वेद का अंतिम समय है उदय का, उसके बाद अपगत वेदी होने पर पहले नपुसक वेद, देखो क्षपणा में क्या होता है, पहले तो आठ कषाय की क्षपणा हो गई, फिर नपुसक वेद की क्षपणा हुई, फिर स्त्री वेद की क्षपणा हुई, फिर पुरुष वेद का उदय मिटा उस समय छह नौ कषायों की क्षपणा हुई, क्योंकि हास्य के साथ पांच को लगाना है ना, जैसे हमने अन्यत्र ग्यारह लिए कहीं पंद्रह लिए, वैसे सन्निकर्ष में हम एक को फिक्स रखते हैं और बाकी की चर्चा करते हैं। देखो स्त्री वेद सही जो उदय से चढ़ता है उसका स्त्री वेद का उदय मिटने पर भी वो छह नौ कषाय की क्षपणा पुरुष वेद के साथ चलती है, यानी उसका पुरुष वेद और छह नौ कषाय एक साथ जाएंगे स्त्री वेद से चढ़ने वाले के, क्यों, स्त्री वेद का उदय पहले मिटता है और उसका उदय मिटने पर अभी पुरुष वेद का नया बंध भी रुक गया है, अब वहां छह नौ कषाय और पुरुष वेद वो सारा का सारा संक्रमित होते रहता है, क्योंकि स्त्री वेद भी पुरुष वेद रूप से संक्रमित होकर नष्ट हुआ था, अभी जो सारा संक्रमित हुआ है वो और छह नौ कषाय वो सब मिलकर संज्वलन क्रोध में संक्रमित हो गए, नपुसक वेदी वाला जो है वो क्या करता है, नपुसक वेद की क्षपणा करता है और स्त्री वेद की भी क्षपणा करता है साथ साथ। जहां अन्य जीवों के नपुसक वेद की क्षपणा पूर्ण होती है वहां इसकी पूर्ण नहीं होती है, वो दोनों का एक साथ क्षपणा करता रहता है। स्त्री वेद की क्षपणा एक समय पहले पूर्ण करता है, एक समय के लिए वो नपुसक वेद का उदय सहित रहा जिसके सत्ता में स्त्री वेद नहीं रहा, और बाद में जैसे उसका सारा संक्रमित होता है पुरुष वेद में, जब वह जीव अपगत वेद हो जाता है तब छह नौकाशार पुरुष वेद को एक साथ संक्रमित करता है। परंतु पुरुष वेद सही जो चढ़ने वाला है, पुरुष वेद के अंतिम समय में छह नौकाशार की वो क्षपणा करता है, अपगत वेदी होने पर वो पुरुष वेद जो नया बंधा है उसकी संक्रमण करता है। ऐसा है ना? नहीं कंफर्म कर। हाँ तो यहाँ क्या कहते हैं, जहाँ हास्य की जघन्य है, जहाँ हास्य की जघन्य है वहाँ अन्य पांच नौ कषायों की जघन्य भी हो सकती है, अजघन्य भी हो सकती है। यदि अजघन्य प्रदेश विभक्ति है वो प्र दिखना है तो बराबर ग्र जैसे भी, ये उसमें कुछ डॉट आया है। तो वह दो स्थान पतित तो होती है, हाँ ग्र दिख रहा है ना। देखो क्या कहते हैं, जहाँ हास्य की जघन्य है अन्य पांच की जघन्य भी हो सकती है अजघन्य भी, यदि हाँ वही उसी सबका अंतिम समय है तो अजघन्य तो कितनी ज्यादा रहेगी, तो कहते हैं अनंत वा भाग अधिक होगा। अभी एक परमाणु भी अधिक होगा तो अनंत वा भाग कहेंगे ना, अनंत वा भाग अधिक है या असंख्यात वा भाग अधिक। इसी प्रकार पांच नौकाशायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी किसी को भी एक को मुख्य रखो, हास्य को अभी रखा था, विरति को रखो, शोक को रखो, अरति को रखो, किसी को। अब आदेश से बात होगी, अभी तो हमने जघन्य और यानी जघन्य के साथ सन्निकर्ष देखा ओग से, अब प्रत्येक मार्गणा में देखेंगे, अब यहाँ तो गतियों में ही लगाते हैं। नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के बाले हुआ बाले। देखो नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य कैसे घटित करना, क्षपित कर्मोशिक से आया है, क्षपित कर्मोशिक से आया है, वहां जाके शुरू में समय को प्राप्त किया है, पूरे समय को रहता है उसका और वो समय को का अंतिम समय लेना उसके, ऐसा ही लेना पड़ेगा क्योंकि मार्गणाओं में जघन्य ऐसा ही होगा। कंफर्म करते देखो, अंश में है यहाँ कहाँ पर है 389 ही देख रही थी मैं, या मेरी इतना गड़बड़ घोटाला है मेरे पास, 384 के बाद डायरेक्ट 389 है। हाँ आदेश में नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य किसके होती है, देखो क्षपित कर्मोशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, अतिशीघ्र पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, सर्व विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी की विसर्जना कर दीर्घ काल तक आयु के सम्यक्त्व को पालन करता रहा और लास्ट में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अभी सातवें नरक में प्राप्त करना था इसलिए लास्ट में उसको मिथ्यात्व में लाया, छठवें नरक तक अगर लेना है तो समय दृष्टि रखना उसको, आयु के अंत में उसका मिथ्यात्व का जघन्य होगा। हाँ यही कहा था मैंने, केवल वो अनंतानुबंधी की बात रह गई थी बताने, समझ में, क्षपित कर्मोशिक से आया। परिणाम विपरीत हो गए तो नरक में चला गया। वहां जाते ही अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि हुआ, तो सम्यक के काल में तो सिद्धि कर्ण घात वगैरह हुए ही हुए, अनंत अनुबंधी की विसर्जना की तब भी हुए, और फिर पूरे 33 सागर में अंतर्मूर्त का मुक्त काल तक सम्यक दृष्टि रहा, तो उसके एक एक निशे गल गया ना नीचे वाला मिथ्यात्व का, और लास्ट में मिथ्यात्व में जा गया वो, उसके पहले वाला समय लेना, सम्यक्त्व का अंतिम समय लेना। हाँ, किसको? सातवीं नरक में, क्योंकि सामान्य में नारकी सातवीं नरक में घटित होगा, और जब विशेष करेंगे हर एक नरक का तो अपने अपने नरक में घटित। तो कहते हैं नारकियों में मिथ्यात्व की जहाँ जगन्य है, उस जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ तो उसके सम्यक्त्व में से तैयार हुई है, सॉरी सम्यक्त्व प्राप्त होने के समय में वो तैयार हुई है, और इनकी जगन्य तो उद्वेलना में होती है, दीर्घ उद्वेलना में, उसके कंपेरिजन में अब कितना है तो असंख्यात गुणा जाता है। बारह कषाय और नौ नौ कषाय उनकी नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात विभाग अधिक होती है, क्योंकि यहाँ इनके बंध का कोई विच्छेद तो हुई नहीं है, इनका बंध तो चलता रहेगा समय दर्शन के काल में भी, इसलिए इसका तो अजगन्य कहा, जो असंख्यात विभाग अधिक, बाकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे